दक्षा द्वस्तकरः कोपयुक्तं मुखं भुजः शूलपाणि सुखाय अस्तु कपालिमे हर्षनीशम सैवगम। दक्ष यज्ञ का विध्वंस करने वाले और क्रोधित मुख कमल वाले शूलपाणि कपाली भगवान हमें दिन और रात सुख प्रदान करें। नमस्कार, मेरा नाम है नीरव हिंगू और वेलकम टू माय पॉडकास्ट द नीरव हिंगू शो। एकादश रुद्र के इस सीरीज में आज हम बात करेंगे अगले एकादश रुद्र की, जिसको कहते हैं कपाली। और भगवान शिव को कपाल या कपाली या कपीश्वर क्यों कहते हैं, चलिए इस पर हम चर्चा विमर्श करते हैं। सेवागम के अनुसार दसवें रुद्र का नाम कपाली है और पद्म पुराण के षष्ठी खंड 17वें में ये बताया गया है कि एक बार भगवान कपाली ने ब्रह्मा के यज्ञ में कपाल धारण करके गए थे, जिसके कारण उन्हें यज्ञ के प्रवेश द्वार पर रोक दिया गया था। और उसके बाद भगवान कपाली रुद्र ने अपने अत्यंत प्रभावी स्वरूप का दर्शन कराया। फिर सब लोगों ने उनसे क्षमा मांगी और यज्ञ में उन्हें ब्रह्मा के उत्तर में बहुमान का स्थान प्रदान किया। और ऐसी कथा है कि उन्होंने एक बार ब्रह्मा जी को दंड देने के लिए उनका 5वां मस्तक काट दिया और कपाल धारण करने के कारण ही दसवें रुद्र को कपाली रुद्र कहा जाता है। इसी रूप में भगवान रुद्र ने क्रोधित होकर प्रजापति दक्ष को विध्वस्त किया था और उसके यज्ञ को भी विध्वस्त कर डाला था। एक बार प्रयागराज में मुनियों का एक महान समागम हुआ था, अर्थात समारोह हुआ था। उसमें ब्रह्मा जी के साथ सभी देवी देवता सम्मिलित हुए थे। भगवान कपाली रुद्र भी वहाँ उपस्थित थे। पीछे से उनके ससुर प्रजापति दक्ष उस सभा में उपस्थित हुए। उन्हें देखकर सभी लोगों ने उठकर उनका सम्मान किया, केवल भगवान रुद्र कपाली ने अपने आसन पर बैठे रहे। अपने दामाद को अभिवादन न करते देखकर प्रजापति दक्ष को क्रोध उत्पन्न हो गया और रुद्र को अनेक दुर्वचन कहने के बाद उस सभा मंडप से निकल गए और भगवान रुद्र को श्राप दिया और उठकर चले गए। बाद में रुद्र को अपमानित करने के उद्देश्य से उन्होंने कनखल में एक विराट यज्ञ का आयोजन किया। उस यज्ञ में सभी देवी देवताओं को आमंत्रित किया, केवल अपने दामाद भगवान रुद्र को नहीं बुलाया। रुद्र पत्नी ने, अर्थात सती जो कि प्रजापति की बेटी है, जब यह यज्ञ का वृतांत सुना तो बिना बुलाए ही पिता के यज्ञ में जाने के लिए अपने पति भगवान रुद्र से अनुमति मांगी। भगवान रुद्र के समझाने पर भी उन्होंने यज्ञ में जाने की हट छोड़ी नहीं। फिर रुद्र ने उन्हें राजोचित ठाट बात के साथ अपने मुख्य गणों के साथ दक्ष के यज्ञ में भेज दिया। यज्ञ में रुद्र का भाग न देखकर, अर्थात आसन न देखकर, सती ने दक्ष के साथ उपस्थित सभी लोगों से जमकर भर्त्सना की और दक्ष के द्वारा उत्पन्न अपने शरीर को योग के अग्नि में सती ने अपने आप को भस्म कर दिया। इधर जब भगवान कपाली रुद्र को यह दुखपूर्ण संवाद मिला तो क्रोध में आकर उन्होंने अपनी एक जटा उखाड़ दी और पत्थर पर पटक दी, जिसके दो टुकड़े हो गए। एक टुकड़ों से प्रलय अग्नि के समान वीरभद्र जी उत्पन्न हुए और दूसरे से महाकाली प्रकट हुई। दोनों ने भगवान कपाली रुद्र की आज्ञा से दक्ष के यज्ञ का विध्वस्त कर दिया और इसके सामने देवता मुनिगण कोई भी ठहर नहीं सका। कुछ तो धराशायी हो गए और कुछों के अंग भंग हो गए। वीरभद्र ने दक्ष के यज्ञ को काट दिया और महाकाली को सौंप दिया। महाकाली ने उसके गेंद के समान खेलने लगी और बाद में यज्ञ कुंड में उसको होम कर दिया, अर्थात समर्पित कर दिया। दक्ष सहित दक्ष यज्ञ को नष्ट करके वे दोनों ही गण, अर्थात वीरभद्र और काली, रुद्र के पास लौट गए। और उसके बाद सभी देवगण ब्रह्मा और विष्णु समेत रुद्र भगवान के पास गए। सभी लोगों ने हाथ जोड़कर रुद्र की स्तुति की और दक्ष के अपराध को क्षमा करके जीवनदान देने और यज्ञ को पूर्ण करने की प्रार्थना की। भगवान कपाली स्तुति से प्रसन्न होकर दक्ष के सिर को मनुष्य सिर की जगह बकरे का सिर जोड़कर उसको जीवन दान दिया और उस यज्ञ को पूर्ण कराया। कपाली रुद्र के अधिभौतिक स्वरूप को पावक कहा गया है। अब हम शिवजी का किरात वेश में प्रकट होने की कथा सुनेंगे। एक बार इंद्र के उपदेश से और व्यास जी की आज्ञा से अर्जुन भगवान महेश्वर की आराधना करने लगे। उनकी आराधना से ऐसे उत्कृष्ट तेज प्रकट हुआ जिससे देवगण डर से गए। वे शिव जी के पास गए और बोले, हे प्रभु, एक मनुष्य आपकी तपस्या में निरत है, वह जो कुछ भी चाहता है उसे आप प्रदान करें। ऐसा कहकर देवता विनम्र भाव से भगवान शिव के चरणों की ओर देखकर खड़े हो गए। उदार दृष्टि वाले बुद्धिमान भगवान शिव इन वचन को सुनकर हंस पड़े, क्योंकि देवताओं के पीछे मनसा को, स्वार्थ बुद्धि को वो जानते थे। उन्होंने देवताओं से कहा, तुम लोग अपने अपने स्थान को जाओ, मैं तुम लोगों का कार्य अवश्य ही पूर्ण करूँगा। और एक दिन मुक नामक दैत्य शुकर का रूप धारण करके अर्जुन की तपस्थली के निकट आया और उस दुराचारी ने दुर्योधन से अर्जुन को मार डालने के उद्देश्य से भेजा गया था, अर्थात दुर्योधन ने उसको इसी उद्देश्य के साथ अर्जुन के पास भेजा था। वह शुकर, वह दैत्य वेगपूर्वक पर्वतों को उखाड़ता हुआ, वृक्ष को काटता हुआ, भयंकर शब्द करता हुआ पहुंच गया। अर्जुन उसे देखकर विचार करने लगे कि यह कृतकर्म करने वाला निश्चय ही मेरा अनिष्ट करने आया है, क्योंकि जिसके दर्शन से मन प्रसन्न हो वह हितेशी है और जिसको देखकर व्याकुलता उत्पन्न हो जाए वह शत्रु है। ऐसा सोचकर अर्जुन ने अपना धनुष बाण उठाया और वे खड़े हो गए। उधर भगवान शंकर भी अर्जुन की रक्षा करने के लिए और उसकी भक्ति की परीक्षा करने के लिए और साथ ही साथ दैत्य का विनाश करने के लिए वहाँ शीघ्र ही किरात के रूप में धनुष बाण लिए प्रकट हो गए। उनके गण भी उनके साथ उसी वेश में वहाँ प्रकट हो गए। अचानक शुकर बड़ी वेग से अर्जुन की ओर दौड़ा और उधर भगवान शंकर भी अर्जुन की रक्षा के लिए आगे बढ़े। एक ही साथ किरात वेशधारी भगवान शिव और अर्जुन दोनों ने ही शुकर को लक्ष्य करके अपना बाण चलाया। शिव जी के बाण का लक्ष्य शुकर का पूछ लग गया, अच्छा अर्थात पूछ का भाग पर लग गया और अर्जुन के बाण को शुकर को मुख का निशाना बनाया गया। शिव जी का बाण उसके पूछ के भाग में प्रवेश करके मुख के रास्ते से बाहर निकल गया और भूमि में विलीन हो गया। वहीं अर्जुन का बाण शुकर के पिछले भाग से निकलकर उनके बगल में गिर गया और इस प्रकार शुकर रूपधारी व दैत्य उसी क्षण मर गया। शिव जी ने अपना बाण लाने के लिए तुरंत अपने अनुचरों को भेजा। उसी समय अर्जुन भी अपने बाण लेने के लिए वहां पहुंच गए। एक ही समय पर रुद्र के अनुचर और अर्जुन दोनों बाण उठाने के लिए पहुंचे। अर्जुन ने भगवान के शिव के अनुचर को डरा धमका कर वह बाण उठा लिया। भगवान शिव के अनुचरों ने कहा, यह हमारा बाण है, आप इसे छोड़ दीजिए। अर्जुन ने कहा, वंचर, तुम बड़े मूर्ख हो, यह बाण मैंने अभी छोड़ा है, इस पर मेरा अधिकार है, इस पर मेरा नाम अंकित है। शिव अनुचर ने उस बाण को अपना स्वामी का बाण बताया। इस प्रकार दोनों में बड़ा ही विवाद हुआ और रुद्र अनुचर की ये सारी बातें किरात वेशधारी शिव भगवान को बताई गई। फिर महादेव का अर्जुन के साथ घोर युद्ध हुआ और भगवान शिव ने अर्जुन की परीक्षा के लिए यह सारी लीला रचना की थी। उसी समय भगवान शिव ने अर्जुन को अपना दिव्य स्वरूप का साक्षात्कार कराया और फिर अर्जुन से अपनी भूल की क्षमा मांगी शिव जी से, और शिव जी ने प्रसन्न होकर सभी प्राणियों की रक्षा के लिए और आने वाले महाभारत युद्ध के लिए अर्जुन को पाशुपते अस्त्र का वरदान प्रदान किया, जिसको इस्तेमाल करके अर्जुन महाभारत युद्ध में विजयी हुए।